सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
परम पूज्य गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
पहला पाठ का तीसरा प्रश्न है आवाज कम है खराब हो गई पहला पाठ का तीसरा प्रश्न धर्म किस लिए करना चाहिए कैसे करना चाहिए और उसे करने से क्या लाभ होता है एक ही प्रश्न के अंतर्गत ये तीन प्रश्न हैं। उत्तर बहुत अच्छा अच्छी तरह से दिया गया है। पढ़े, पहला पैराग्राफ पहले पढ़े। धर्म किस लिए होता है, इसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया है। धर्म केवल आत्मकल्याण के लिए ही करना चाहिए और आत्मकल्याण के लिए ही होता है। जो काम जिस के लिए करना चाहिए वह काम उसी के लिए यदि हम करते हैं तो वह ठीक माना जाता है। यदि उस कार्य को उसके लिए न करते हुए किसी अन्य के हेतु से, किसी दूसरे हेतु से हम करते हैं तो वह गलत माना जाता है। इस संसार में धर्म का उपदेश हुआ, मूल उपदेशक तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। तीर्थंकर ही है ना, क्या और कौन है? तीर्थंकर ही है, मूल उपदेशक हैं। उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, धर्म का दिया, अधर्म का तो नहीं दिया। क्या अधर्म का भी दे दिया? नहीं दिया। धर्म उपदेश के योग्य है, अधर्म उपदेश के योग्य नहीं है। अधर्म को सब जीवों ने इस संसार में अनादि बार किया है, वह सबके पास है। अधर्म देने योग्य नहीं है। संसारी प्राणियों के पास स्वभावतः वह रहता आ रहा है, उसका उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती। बुराइयों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कोई भी पाठशालाओं की जरूरत नहीं रहती। अच्छाइयों को समझाने, पढ़ाने, सुशिक्षित करने, उसके लिए दुनिया में लाखों करोड़ों पाठशालाएं हैं, स्कूल कॉलेज हैं। इन सब में हम अच्छे बनने के लिए शिक्षा पाते हैं, सुखी होने के लिए शिक्षण प्राप्त करते हैं। फिर भी अच्छाई कम आती है और बुराई हमारे जीवन में ज्यादा रहती है। अच्छाई को बढ़ाना चाहते हैं और बुराई को घटाना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य होता है। उसके लिए क्या करें, तो शिक्षण पाए। शिक्षण किस उद्देश्य से पाना चाहिए, बुराई को दूर कर अच्छाई को विकसित करना और स्वयं सुखी बनना, ये हमारा मूल लक्ष्य है, मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रयास बहुत करते हैं। स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वह लौकिक कहलाती है, वह संसार को चलाने हेतु, संसार को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु हमारे लिए सहयोग का काम करती है। वह पढ़ाई शरीर के लिए है, शरीर के लिए सारा संसार पढ़ रहा है। किसी भी विदेश में कहीं भी जा कर के देखें, कर्मभूमि में पढ़ाई होती है। शारीरिक जीवन जीने के लिए जो पढ़ाई चाहिए वह अलग है और आत्मिक जीवन जीने के लिए जो पढ़ाई चाहिए वह अलग है। दोनों विद्याएं, दोनों शिक्षण अलग अलग हैं, उनको हम पाते हैं। उन दोनों पढ़ाई कर कर के अपने जीवन में हम सुखी बनने का लक्ष्य रखते हैं और सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं। लौकिक पढ़ाई किस लिए होती है, शरीर के लिए। और धार्मिक पढ़ाई फिर किस लिए होना चाहिए, आत्मा के लिए। और पुसद में पाठशाला बंद होके जा रही है, बंद पड़ गई है। शारीरिक पढ़ाई महत्वपूर्ण है क्या, आत्मिक पढ़ाई महत्वपूर्ण है क्या, दोनों महत्वपूर्ण हैं? दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कभी जीवन में हुआ है कि पूरे गांव में शरीर सुख के लिए जो पाठ स्कूल कॉलेज इत्यादि होते हैं उससे माता पिताओं ने अपने बच्चों को रोका और किसी एक भी घर वालों ने स्कूल कॉलेज नहीं भेजा? ऐसी कभी घटना घटी? और उस पढ़ाई के काल में कई बच्चे, कई विद्यार्थी बुरे कार्य भी कर बैठते हैं तो कई विद्यार्थी अच्छे कार्य भी करते हैं। पूरे गांव में एक आध विद्यार्थी गलती करता है तो क्या सभी माँ बाप, गांव के सभी लोग क्या अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से चूकते हैं? पर धर्म के अंदर ऐसा क्यों होता है? अपनी समझदारी की कमी कहना चाहिए या वस्तुतः ऐसा होना चाहिए, आवश्यक है? धर्म की पढ़ाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लौकिक शिक्षण महत्वपूर्ण है। आप शरीर के लिए कमा रहे हैं, शरीर सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आत्म सुख के लिए क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न का कोई प्रश्न पूछेगा तो इस प्रश्न का क्या उत्तर दोगे? आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आत्मकल्याण के लिए, क्या उत्तर दोगे? क्या ये उत्तर दोगे? नहीं, आजकल तो हम आत्म की पढ़ाई को बंद कर चुके हैं, आत्मा को उपवास रखा है और शरीर को ही केवल ध्यान में रख करके हम चल रहे हैं, ऐसा कहोगे? सब लोगों ने फार्म लिया है कि नहीं? लिया है, इसमें प्रमाद नहीं करना है। शरीर की पढ़ाई तो भव भव में होती आ रही है, शरीर सुख के लिए तो भव भव में हमने सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है शरीर के लिए, पर दिया हुआ साथ नहीं चलता। शरीर को कितना भी दे दो, कितना भी खिला दो, कितना भी सुखी बना दो, शरीर यहीं रहने वाला है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिलने वाला है। क्या मिट्टी भी साथ आने वाला है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलने वाला है, इसका एक पुद्गल परमाणु भी साथ में नहीं चलने वाला है। ये सब कुछ पता होते हुए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर शारीरिक शिक्षण के लिए ही देते हैं, कभी चूकते नहीं, बल्कि उसके लिए पैसा दे दे करके कितना भी दूर हो, दूर ले जाकर अपने बच्चों को भेजकर इतनी मेहनत से पढ़ाई कराते हैं। शरीर की पढ़ाई ही इतनी चिंता से, इतनी सावधानी से, अप्रमत्त होकर के शरीर की पढ़ाई यदि चल सकती है, क्या धर्म की पढ़ाई इससे कम महत्व का है? सोचिए आप, हम क्या सोचते हैं? हमारी सोच में बहुत कमी है, हमारी विचारधारा में आत्मा का कार्य तो आत्मा का कार्य है, वो तो बाद में, आत्मा के कार्य के लिए धर्म चाहिए और शरीर के लिए भौतिक सुख साधन की शिक्षाएं चाहिए। उस पर हम कितना जोर देते हैं और इस पर हम कितना जोर देते हैं, इसी से पता चलता है इस आत्मा ने आज तक संसार से मुक्त क्यों नहीं हुआ, संसार से पार क्यों नहीं हुआ, ये भगवान क्यों नहीं बन पाया, इसका क्या उत्तर होगा? केवल एक ही, प्रमाद। किसके प्रति प्रमाद? खुद अपने प्रति। खुद अपने प्रति इतना बड़ा प्रमाद, और जो खुद हम नहीं हैं, जिसको दूसरा है, अन्य कहा है, दूसरा कहा है, उसके प्रति बिल्कुल अप्रमत्त होकर के चल रहे हैं। हम भी अप्रमत्त रहते हैं और अपने परिवार को भी अप्रमत्त रखते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? शरीर के लिए तो प्रमाद छोड़कर काम कर रहे हैं और आत्मा के लिए सावधानी नहीं है, चिंता नहीं है। सम्यक ज्ञान संस्कार पुस्तक पढ़ने बैठे हैं, संस्कार ले रहे हैं, ये संस्कार किसका? शरीर का है या आत्मा का? आत्मा का। पहली लाइन में ये उत्तर दिया है, धर्म किस लिए करना चाहिए? आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। इसमें भी गलती करते हैं लोग, इसमें भी बहुत, यानी 99% लोग गलती करते हैं कि धर्म को आत्मा के लिए वो कभी नहीं कर पाते, न करते हैं। धर्म करते हैं, धर्म की क्रियाएं हो जाती हैं, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, छठ क्रियाएं करते हैं, अवश्य करते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए यह ज्ञात न होने से, यह मालूम न होने से वे इसमें भी गलती कर बैठते हैं। भगवान के सामने जाते हैं और भगवान से कहते हैं, हे भगवान, हम तो संसार में बहुत दुखी हैं। जब दुख को आते हैं संसार में, तब आप याद आते हैं, इसलिए हम दौड़े दौड़े मंदिर चले आते हैं, दौड़े दौड़े हम डिग्रज भी चले जाते हैं, दौड़े दौड़े महावीर जी पहुंच जाते हैं, दौड़े दौड़े शिखर जी भी जाते हैं, और दौड़े दौड़े औरंगाबाद, कचनेर भी चले जाते हैं। इतनी आकुलता बढ़ती है कि शारीरिक सुख कम पड़ने लग जाए, संसार में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए, संसार में कुछ भी हमारे लिए कम पड़ने लग जाए, तो कम पड़ी हुई वस्तु को पाने के लिए भगवान याद आते हैं। भगवान, हे भगवान, क्यों आते आप याद इन लोगों को, पता नहीं। नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संसार सुख पाने के लिए भगवान याद आ जाएं तो धर्म नहीं कर सकते, और धर्म करने के लिए आप यथार्थ धर्म करने के लिए जा रहे हैं तो भगवान याद आना ही चाहिए। आना बहुत अच्छा है, क्योंकि धर्म आत्मा के लिए है। आत्मा के लिए जब हम धर्म करते हैं तो भगवान अवश्य याद आना चाहिए। भगवान के पास जाने से, भगवान के सत्संग से, भगवान के पास रहने से हमारे लिए अपने आत्मकल्याण की शिक्षा प्राप्त होती है। उनके वीतराग मुखारविंद को देख करके आत्मकल्याण की बातें हमारे अंदर ध्यान में आने लगती हैं, और हम उस दिशा में चिंतक विचारक हो जाते हैं। भगवान अवश्य याद आना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए भगवान को याद करो, और संसार कल्याण के लिए किसको याद करो? अभी तक भगवान को ही याद किया है तो किसका नाम ले पाओगे? अभी तक जिसको याद किया है, भगवान को याद किया है, संसार का कल्याण होने के लिए किसको याद करना चाहिए? नहीं मालूम? इसका उत्तर मालूम नहीं था, इसलिए तो हम धर्म नहीं कर पा रहे थे। जिसको असली धर्म कहते हैं, उसको हमने अनादिकाल से एक बार भी नहीं किया। शारीरिक समस्याएं आ जाएं, सांसारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएं घर में, तो पुण्य पाप को याद करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक सुख को न भगवान देते हैं, न मंत्र तंत्र देते हैं, न कोई देवी देवता देते हैं। ये सही है क्या गलत है? नहीं, कई लोगों को ये लग सकता है कि ये कैसे, अभी तक तो ऐसा ही हम समझते थे कि वही देते हैं, और देते हैं इसलिए हम जाते हैं, नहीं तो दिग्रस की क्या जरूरत है अपने जीवन में, कचनीर की क्या जरूरत, शिखर जी की क्या जरूरत? ये सब जो क्षेत्र बने हैं ये इसी के लिए बने हैं ना, कि जब जब संसार उलझ जाए सुलझाने के लिए यहां आना चाहिए। ये क्षेत्र आदि क्यों बने बनाए गए, कि संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्या आत्मकल्याण के लिए? आत्मकल्याण के लिए। आज ही समझ में आ रहा है और पहली बार समझ में आ रहा है और शुरुआत आज ही होगी हमारी। धर्म की शुरुआत जीवन में तब होती है जिस दिन हमें धर्म का सच्चा स्वरूप समझ में आ गया। ये सारे क्षेत्र, सारे मंदिर, सारे शास्त्र, गुरुओं का उपदेश, भगवान की दिव्य ध्वनि, समोशरण जाना, समोशरण में बैठकर उनका उपदेश सुनना, स्वाध्याय करना, देव पूजा करना, गुरुपास्ती, संयम, तप, दान इत्यादि जो षट क्रियाएं हैं, ये सारे के सारे किस लिए? आत्मकल्याण के लिए या उलझे संसार को सुलझाने के लिए? आत्मकल्याण के लिए। कम से कम भविष्य में ध्यान रखो, अभी तक जो भी किया है कोई बात नहीं। नरियल हमको क्या सुख दे सकता है? उसमें भी सुख की परिकल्पना करते हैं और उस नरियल को भगवान से जोड़ देते हैं और उस नरियल को बांध लेते हैं। कैसी कैसी कल्पनाएं, यानी जहां सच्चे धर्म का उपदेश है, जिस कुल परंपरा में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, उत्तम ज्ञान, उत्तम श्रुत, उत्तम जिनवाणी यहां पर है, और इसके बीच भी हमारा ज्ञान भटक जाता है। हम अनेक प्रकार के कार्य को, जिसके लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते, और अज्ञानवश किसी कार्य को किसी और दूसरे के लिए करते हैं, तो हमें सुख मिल भी कैसे सकता है? नरियल को बांधने से नरियल हमें सुख देता है, समझने की बात है। आप व्यर्थ काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, और उस कार्य से कोई लाभ पहुंचता है अपने जीवन में, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं उसके लिए रंच मात्र भी लाभ पहुंचता है ऐसी बात नहीं है। हमारी श्रद्धा उल्टी हो गई है, श्रद्धा ही अंधश्रद्धा में बदल गई है। हम विश्वास जो कर रहे हैं जिस पर, वह विश्वास ही उल्टा विश्वास है। आकाश से फूल बरसे, ये यदि परिकल्पना करके, ऐसी श्रद्धा करके आज यहाँ पर अपन बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आकाश से फूल बरसना चाहिए, इस हेतु से पूरे एक घंटे की पढ़ाई करते हैं और जाते जाते कामना करके चले जाते हैं, क्या आकाश से फूल बरसेंगे? नहीं महाराज, बरस भी सकते हैं। अगर देवों ने हमारी बात सुन ली तो आकाश से फूल भी बरस करके चले जाएंगे। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आकाश से फूल भी बरस सकते हैं। कौन बरसेंगे? देव लोग बरसेंगे। तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक में रोज, हर रोज कितने करोड़ रत्नों की वृष्टि हुई है? 5-5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5-3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई। शायद तीर्थंकर बताते होंगे देवों को, मैंने जन्म लिया है और आ जाओ 3.5 करोड़ रत्न बरसा के चले जाओ। निवेदन करते हैं, कोई लोग हैं, तीर्थंकर हैं, वो कोई निवेदन करने से ये कार्य होता है क्या? फूल नहीं और रत्न बरस रहे हैं, 3.5 करोड़ और एक भी व्यक्ति ने निवेदन नहीं किया देवों से कि भगवान जन्मे हैं और आपका कर्तव्य है और आना चाहिए और रत्न बरसा के जल चले जाना चाहिए। किसी ने निवेदन किया था क्या? नहीं करते तो कैसे बरस गए अपने आप? अपने आप कैसे बरसते रत्न? कोई बरसों कहते नहीं, उनको याद तक नहीं करते कि रत्न वृष्टि बरसाने के लिए आज सुबह सुबह कोई तीर्थंकर के मकान पर आएगा, महल पर आएगा, फिर भी आकर के बरसा करके चले जाते हैं। किस कारण से ऐसा होता है? ये किसका फल है? सातिशय पुण्य का फल है। वो पुण्य कैसा आता है? सातिशय पुण्य को कमाने का साधन क्या है? धर्म करना चाहिए। तो पुण्य कमाने के लिए ही धर्म करना चाहिए या आत्म कल्याण के लिए धर्म कमाना चाहिए? तो पुण्य कमाने के लिए तो धर्म करना ही नहीं चाहिए, अपने आप आता है। आज ही समझ में आ रहा है, अभी तक तो आया ही नहीं था वो। अपने आप आता है पुण्य, अपने आप आता है। जो व्यक्ति आत्म कल्याण करने के लिए, कल्याण के उद्देश्य से धर्म करने लगता है तो उस व्यक्ति को बहुत प्रकार के कार्य एक साथ हो जाते हैं। 3-4 प्रकार के कार्य एक साथ होते हैं यूं कहना चाहिए। एक ये है कि धर्म करते समय पुण्य का बंध बिन मांगे हो रहा है, जैसे रत्न वृष्टि तीर्थंकरों के यहाँ बिन मांगे, बिन याद किए, बिन भावना भाए ऑटोमेटिक हो रहा है। न लोग याद करते हैं देवों को और न ही तीर्थंकर स्वयं याद करते हैं देवों को, पर बराबर टाइम टू टाइम आकर के हर रोज 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि करके चले जाना, ये बिना पुण्य के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, सुबह शाम 3 बार, हाँ 3-3 बार, 3-3 बार, कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा पुण्य, 3-3 बार रत्न की वृष्टि होती है और किसी ने कहा तक नहीं उनको, वो स्वयं अपना कर्तव्य समझ करके आ रहे हैं। यदि पुण्य अपने पास होता है, ध्यान से सुन रहे ना, अपने पास यदि पुण्य होता है और उसमें भी यदि सातिशय पुण्य होता है तो देवों को भी बुलाना नहीं पड़ता और न ही उनको याद करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आते हैं। जो काम करना चाहिए वो करके चले जाते हैं। ये कैसे देव ऑटोमेटिक आ जाएं और बुलाए बिना आ जाएं? ये ऐसे कैसे हो सकता? आप ऐसा सोच सकते हैं। बुलाए बिना आ सकते कि नहीं? क्या बुलाना पड़ेगा? तीर्थंकर बुला रहे हैं क्या? बोलो। नहीं बुला रहे। जो करना था बहुत पहले कर चुके थे, वो आत्म कल्याण के लिए धर्म कर रहे थे, आत्म कल्याण के लिए ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, आत्म कल्याण के लिए ही हरेक चेष्टाएं, धार्मिक चेष्टा, धार्मिक प्रवृत्ति उनकी होती थी पूर्व भव में। उस समय जो सातिशय पुण्य का बंध हुआ है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ये पुण्य ऑटोमेटिक सबके सिंहासन को हिलाता है। गर्भ में आए तब सिंहासन हिला, जन्म लिए तब भी सिंहासन हिला, दीक्षा लिए तब भी सिंहासन हिला, ऑटोमेटिक क्या कोई हिला रहा है सिंहासन? नहीं, इतनी दूर, 1 करोड़ मील दूर है, कितने करोड़, नहीं 1 करोड़ नहीं, 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन ऊंचाई पर स्वर्ग है, और इतनी दूरी पर वहाँ सिंहासन में भूकंप हो जाना और मध्यलोक में किसी विशिष्ट आत्मा के जन्म होने के कारण से हो जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। धरती पर जो भूकंप आता है तो यहाँ का कारण यहीं पर रहता है, किंतु स्वर्ग में यहाँ का प्रभाव स्वर्ग तक चला जाए और वहाँ घंटी बज जाए, सिंहासन हिल जाए, ये भूकंप ही है ना एक प्रकार का। स्वर्ग में भी भूकंप आता है, यानी अच्छाई के लिए, विनाश के लिए नहीं आता, अच्छाई के लिए। तीर्थंकरों का पुण्य देखो कैसा, साथी से पुण्य का प्रभाव देखो, यहाँ बैठे बैठे वहाँ सिंहासन हिल गया और ऑटोमेटिक देव लोग आ गए। औदी ज्ञान लगा करके देखना ही पड़ता है, देख लेते हैं और वहाँ से यहाँ आ जाते हैं और कर्तव्य समझ जाते हैं वो क्या करना चाहिए। भगवान ने जन्म लिया है तो रत्न की वृष्टि करनी चाहिए। ध्यान से सुन रहे हैं ना? हाँ, कौन सा वार जाते हैं दिग्रज? हाँ, सोमवार, आज के दिन ही। अच्छा, आज ही विषय निकला, अच्छा योग है। योग अच्छा है। मतलब हमारा संसार अगर दुखमय हो जाए, दुखमय संसार को सुलझाने के लिए नरियल को और दिग्रज के बाबा को याद दिलाना पड़ता है क्या? गलत है, अंधश्रद्धा है, लोकमूर्ता है, टोटल व्यर्थ, टोटल व्यर्थ की बातें। 10 रुपये का नारियल खराब हो गया, 10 रुपये खराब हो गए, और दिग्दश तक जाने के लिए गाड़ी का खर्चा, वो पेट्रोल खराब, टिकट खराब। वहाँ भगवान से जो निवेदन किया, भगवान भी मुस्कुराते रहे, ये देखो मेरे लिए निवेदन करने आया, इसके संसार उलझ गया है और मैं इसको ठीक करूं कैसे संभव, मैं तो मोक्ष चला गया हूं और नीचे आकर के कुछ कर सकूं ये भी संभव नहीं, मैं तो सिद्धालय में बैठ गया और ये दिग्रज में आ गए। मैं दिग्रज में होता तो कुछ कर भी लेता। मैं तो मोक्ष में आया और ये दिग्रज आ गए और हम मोक्ष में चले गए, अब इसका कार्य कैसे हो? बेचारा दुखी है। दिग्रज के बाबा को भी दुख होता है कि आपको लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप जिस सद्भावना से वहां चले गए हैं उसकी आशा तो पूर्ण होनी चाहिए ना, कौन करेगा? तो बाबा के जो भक्त थे वो मंदिर में हैं, वहीं बैठे हैं। कहीं भी चले जाओ, उनके भक्त तो रहते ही हैं। आपके उलझे संसार को क्या भक्त लोग सुलझा सकते? विचार करो, सम्यक ज्ञान अर्जन करने के लिए बैठे हैं आज के दिन, सच्चा ज्ञान प्राप्त होना, और सच्चे ज्ञान से किया हुआ धर्म कार्य 100% प्योर फिल्टर होता है, निश्चित रूप से वो फल देता है। सच्चे ज्ञान से किए गए कार्यों के माध्यम से ही हम हर उलझे बात को सुलझा सकते हैं, चाहे वो संसार का हो चाहे आत्मा का हो, सुलझा सकते हैं। संसार के कार्य उलझने से यदि हम कहीं चले जाते हैं और यही सच्चा ज्ञान है, तो सारी दुनिया में जितने लोग हैं, मंत्र तंत्र देवी देवता धर्म इत्यादि के माध्यम से कोट्याधीश बनते, मंत्र तंत्र से इन विद्याओं से साहूकार बनते। और विशेष बात यह है कि अपना भारत पूर्व से ही धार्मिक रहा है, विशेष धार्मिक देश यदि कोई है तो कौन है, भारत। और धार्मिक देश के लोग ही उलझ गए हैं, उनके जीवन में सुख नहीं है, उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यदि धार्मिक लोग ही समस्याओं से घिरे हुए हैं तो जो धार्मिक नहीं वो कितने दुखी होंगे। पाश्चात्य लोग कोई धर्म नहीं जानते, उनको कौन सुख दे रहा है। वहां को ही देवी देवताओं के मंदिर मूर्तियां नहीं हैं, उन्होंने किसी देव को नहीं पाला, किसी मंत्र तंत्र को नहीं पाला, किसी को कुछ मानते ही नहीं है वो। पाश्चात्य लोगों को धर्म ही मालूम नहीं है, सुख कौन देता है ये भी मालूम नहीं, कौन नहीं देता ये भी मालूम नहीं। उनका जीवन भी सांसारिक जीवन चल रहा है, वह सांसारिक जीवन कभी सुलझा हुआ भी रहता है और उलझा हुआ भी रहता है, सुखी भी रहता है तो दुखी भी रहता है। उनके लिए जो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है उसका हेतु कौन, उसका कारण कौन? कर्म ही है ना। क्या अमेरिका के लोगों में ऐसे सांसारिक कष्ट आने पर क्या दिग्रज आ जाए वो नरियल लेकर बांधने के लिए आ जाए? यदि ये उलझन सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। 10 ही रुपए का तो खर्चा है, 10 करोड़ आएगा। भगवान ने ऐसा कहा है क्या, तुम 10 रुपया दे दो हम 10 करोड़ देंगे? उपदेश दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर ऐसे उपदेश देते तो आपका जाना उचित था, और आपका जाना यदि उचित था तो आप अकेले नहीं, पाश्चात्य लोगों को भी बुला सकते थे। जो भी संसार से दुखी हो यहाँ दिग्रज आ सकते, आओ नारियल लेकर के सुखी हो जाओ, 10 रुपए खर्चा करो, 10 करोड़ ले जाओ। बहुत समझ में आ रहा है ना, सच्चा ज्ञान क्या होता है और अज्ञान क्या होता है। इन बातों में विश्वास रखना ये अज्ञान है क्या ज्ञान है? अज्ञान है। ये सब करने नहीं पड़ते, धर्म किस लिए करना चाहिए, किस लिए किया जाता है, वो किसके उद्देश्य है, यही बात हमें समझना है। संसार में धर्म भी है, धर्म करते हैं लोग, संसार में धर्म है, उसको क्यों करना चाहिए, और वो है तो किस लिए है? संसार सुख देने के लिए है क्या, आत्मिक सुख देने के लिए? तो उस धर्म को हम सांसारिक सुख पाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो ये ठीक है क्या? दिग्रज जाना धर्म है, सिकरज जाना धर्म है। धर्म क्या है कि नहीं, धर्म की क्रियाएं हैं, ये धर्म की चेष्टाएं हैं। धर्म अंदर होता है, क्रिया बाहर होती है। यदि हमारे पास धर्म है तो धर्म की क्रियाएं करते हैं, और धर्म नहीं है और धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं तो ये क्रियाएं धर्म की कोटि में आएंगी कि अधर्म की कोटि में? अधर्म की कोटि में आएंगी। अंदर तो धर्म नहीं है और बाहर में धर्म की क्रियाएं करते जा रहे हैं, तो वो धर्म की कोटि में आ सकती हैं कि क्रियाएं? विचार करो, नहीं आ सकती। अगर अंदर अधर्म है और बाहर में हम धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं तो भी वो अधर्म की ही क्रियाएं कहलाएंगी। है धर्म की क्रियाएं वो वास्तव में, पर अंदर अधर्म है इसलिए बाहर की क्रियाएं भी अधर्म हो गई। अगर अंदर धर्म होता तो बाहर की क्रियाएं क्या कहलाती? तब धर्म कहलाती, धर्म की कोटि में आती। सच्चे ज्ञान से उत्पन्न क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं। लिख के रखो और चिंतन करो इस बात को। सच्चे ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं और मिथ्या ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अधर्म की कोटि में आती हैं। यही चिंतन करना है। सच्चे ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, सच्चे ज्ञान के द्वारा की जाने वाली बाह्य क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं। सच्चे धर्म, सच्चे ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं धर्म की कोटि में आती हैं। अब इसका नेगेटिव लिखना है, क्या लिखेंगे? मिथ्या ज्ञान के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं बाह्य क्रियाएं, बाह्य भी शब्द जोड़ दो, बाह्य क्रियाएं अधर्म की कोटि में आती हैं। ज्ञान न होने से ही अपन गलती करते हैं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, समझदारी नहीं, और इसी समझ को भगवान ने हम सब के लिए दिया है और कहा है, धर्म करो तो सावधानी से करो, समझ करके करो, विवेक से करो, ये कहा है। समझ में आ रही है ना? अब दिग्रज जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना? वो तो सब कुछ करेंगे, जो कुछ करना है वो भी करेंगे और नहीं करना वो भी करेंगे, बस उनका काम होना चाहिए, काम होने तक नहीं छोड़ेंगे वो। और हर सोमवार जा करके ये सब करके आएंगे तो भगवान केवल आपको देख करके मुस्कुरा सकते हैं, बोल तो सकते नहीं है ना? गलती आप कर रहे हैं लेकिन बोलने के लिए भी भगवान आने वाले नहीं हैं। भगवान नहीं आएंगे, भगवान अपनी जिनवानी को पीछे से छोड़ करके वो चले गए हैं। जिनवानी माँ की शरण में जाओ और पूछो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जिनवानी माँ ही समझा सकती है आज हम लोगों को, भगवान तो आएंगे नहीं। हमें छोड़कर मोक्ष गए भगवान, हमको छोड़ करके चले गए। पर पीछे कुछ छोड़ करके चले गए। क्या छोड़ के चले गए? अपनी वाणी को, जिनवाणी को छोड़ करके चले गए। वह जिनवाणी को हम माँ समझते हैं, कम से कम माँ से संपर्क रखो, जिनवाणी माता से संपर्क रखो, माता से पूछ करके जाओ। जब जाते समय सोमवार हो तो माँ के पास पूछ के जाना, हे जिनवाणी माता, हम दिग्रस जा रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं? आपको पूछे बिना हम नहीं जा सकते, भगवान तो है ही नहीं, आप ही हमारी माँ हैं, हम पूछ के जा रहे हैं, जाएं के नहीं जाएं, जिनवाणी से पूछो। और ऐसा प्रश्न पूछो और आधा घंटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ। आधा घंटा लगेगा ना कम से कम, कि एकदम से जिनवाणी उत्तर देगी और आप जाएंगे। आधा घंटा स्वाध्याय करो। आधा घंटा नहीं करते हैं तो एक मिनट के लिए करो, एक ही मिनट के लिए। क्या पढ़ो? बस सम्यक ज्ञान संस्कार पुस्तक निकालो और तीसरा प्रश्न पढ़ो और फिर दिग्रज जाओ। तीसरा प्रश्न का उत्तर पढ़ो और फिर दिग्रज जाओ, जा ही नहीं सकोगे। जिनवाणी माँ कहेगी, कहाँ जा रहा है बेटा, क्या गलती कर रहा है, व्यर्थ सोच रहा है, व्यर्थ ही विचार कर रहा है, कहीं सुख नहीं है, कहीं बाहर भागने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिनवाणी माता यही समझा रही है। धर्म किस लिए करना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए, धर्म करते समय ये धर्म किस उद्देश्य से किया जाता है, इसी प्रश्न का उत्तर मालूम न रहने से हम गलती करते रहे, गलती करते रहे, गलती पर गलती। कितने नरियल खराब हो गए, हर सोमवार को एक एक नरियल खराब हो गया। उन्हीं नरियलों को यदि आज तक आप इस उद्देश्य से चढ़ाते, हे भगवान, हम आत्म कल्याण के लिए आए हैं, आत्म कल्याण के लिए ही धर्म हम करते हैं, हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, ये श्रीफल मोक्ष प्राप्ति का साधन है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुसु दीप सु धूप फलार्घ कई, एक अर्घ्य बोल करके, श्लोक बोल करके, ओम ह्रीम, कौन से भगवान ने दिग्रज में, आदिनाथ, आदिनाथ तीर्थंकराय, सच्चा ज्ञान दायकाय, आदिनाथ तीर्थंकराय, सम्यक ज्ञान प्रदाताय कह करके यदि एक नरियल, एक क्या, रोज रोज, हर सोमवार, आठ दिन में एक बार, सोमवार सोमवार अगर नरियल चढ़ाए होते तो सातिशय पुण्य बढ़ गया होता और संसार में जितने भी उलझने हैं आज तक सुलझ गई होती। ऑटोमेटिक निष्काम वृत्ति से, निष्काम भावना से जब भगवान की भक्ति आप करते हैं तो उस समय सातिशय पुण्य का बंद होता है, और यह आत्म कल्याण की भावना से करते समय सातिशय पुण्य का बंद होता है। जाओ तो कहीं आत्म कल्याण के लिए जाओ, शिखर जी जाओ, दिग्रज जाओ, कहीं भी जाओ, मना नहीं है, ये जाने के लिए ही बनाए गए हैं, आत्म कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं, ये आत्म कल्याण के केंद्र हैं, आत्म कल्याण के सुख के केंद्र हैं, स्थान हैं, ये आयतन हैं, अनायतन नहीं। इनको सत्संग कहा है, दुस्संग नहीं। क्षेत्र आदि आयतन की कोटि में आती हैं। इनकी यात्रा करने से हमारा पाप कर्म घटता है, पुण्य कर्म स्वयं बढ़ता है, आत्मा का कल्याण के उद्देश्य को लेकर के हम यदि वहाँ पहुँचते हैं और आत्म कल्याण के लिए धर्म करते हैं तो पुण्य ऑटोमेटिक बढ़ता है और संसार के सारे उलझने भी सुलझ जाती हैं। लोगों की समझदारी में गलती कब से और कहाँ से हुई पता है ना? ये गलती तब से हुई, जैसे कि हाँ, दिग्रज जाने से ही सुख मिलता है, संसार सुख भी और आत्मिक सुख भी। पर आत्मिक सुख को गौण करके केवल सांसारिक सुख को देह में रखकर दिग्रज जाएगा या किसी क्षेत्र पर जाएगा तो क्या संभव है कि संसार की सारी उलझने उलझने मिट जाए? नहीं, कभी संभव नहीं। आप रास्ता चूक गए, चलते चलते ध्येय बदल गया, और ये ध्येय बदलने से बहुत अनर्थ होता है, बहुत बड़ा घाटा होता है। ध्येय नहीं बदलना चाहिए, जिसका ध्येय जिसके लिए है उस ध्येय को लेकर के ही हमें चलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र पर जाएं तो आत्म कल्याण के लिए जाएं, भावना को लेकर के जाएं। क्या भावना लेकर के? कि आत्म कल्याण का कार्य कर्म निर्जरा के लिए करना होता है। कर्म निर्जरा के लिए काम करो, पाप कर्म की निर्जरा हो लेकिन पुण्य कर्म बड़े, ऐसा निवेदन मत करो, यहीं पर हम भटक जाते हैं। कर्म निर्जरा के लिए तो धर्म कर सकते हैं, क्या पुण्य प्राप्त हो, साथ से पुण्य का बंध हो, ये कामना रख सकते हैं? और कामना से क्या साथ से पुण्य का बंध हो जाएगा? नहीं, मन की पवित्रता से पुण्य का बंध होता है, मन की निर्मलता उसमें कारण होता है। और मन की निर्मलता जो होती है वो तब होती है जब हमारा उद्देश्य आत्म कल्याण हो। मुझे आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा की निर्मल परिणामों को सुरक्षित रखना है, कोई कामना जगने नहीं देना है अपने मन में, मैं कामना रहित रहूं, भावना से सहित रहूं। भावना, आत्म कल्याण की भावना करना और संसार सुख की कल्याण की संसार सुख की प्राप्ति की कामना को त्याग देना, ये कर्तव्य होता है। इस प्रकार का यदि हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लग जाएगा, बहुत बड़ा चमत्कार। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। जैन धर्म में मांगने का नामो निशान नहीं है, मांग से किसी भी पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। जैन धर्म में ऐसा कहा ही नहीं, मांग मांग करके तुम अपने झोली भरते रहो। अपने अभाव की पूर्ति करते रहो, मांग मांग करके करते रहो, ऐसा उपदेश जैन धर्म में नहीं है। तो फिर हम क्यों करें? करें तो फिर अच्छा करें, सच्चा करें, जो है वास्तविक है उसको करें, जो है सत्य है उसको करें। तो क्या करें, कैसा करें? इतना ही करें, जहां भी जाए आत्म कल्याण के लिए जाए, अपनी मानसिकता को निर्मल करने के लिए। मलिन है ना कामना के कारण से, उस कामना को ही समाप्त करके भावना से जाओ और आत्म कल्याण के लिए जाओ, और आत्मा के परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए जाओ। मंदिर जाना चाहिए किस लिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। मंदिर जाना चाहिए किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। मंदिर जाना चाहिए किस लिए? कर्मों की निर्जरा हो और निर्जरा से आत्मा की पवित्रता बढ़े, इसलिए जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से जब आप जाना शुरू करेंगे तो चमत्कार घटित हुए बिना रहेगा ही नहीं। मानतुंग आचार्य ने भर्म भक्तामर पढ़ा, किस समय पढ़ा था? जब वो जेल में थे और ताले टूट गए थे एक एक श्लोक बोलने से। आपका ताला एक भी नहीं टूटने वाला, कुछ भी करो आप। मानतुंग आचार्य भक्तामर पढ़ा तो उन्होंने स्वयं बनाया, उसी समय बनाया। इतने विशुद्ध परिणाम थे कि संस्कृत के ज्ञाता थे, वो बोलते चले गए, वो श्लोक बनते चले गए। उन्होंने स्तोत्र पढ़ा और एक एक ताले टूटते गए। ये कथा आप सुनते भी हैं। मानतुंग आचार्य ने किन भावों से पढ़ा होगा ये विचार नहीं करते, बस इस बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं कि भक्तामर पढ़ने से ताले टूटते हैं, भक्तामर पढ़ने से सिर दर्द खत्म होता है, भक्तामर पढ़ने से रोग दूर होता है, भक्तामर पढ़ने से दुकान चलती है। ये बातें पकड़ करके बैठे हैं अपन, और ये सभी बातें कामना की हैं, और कामना धर्म का विनाशक है। कामना हमारे जीवन के सारे चमत्कारों को समाप्त कर देता है, जो चमत्कार पैदा होना चाहिए उसको रोक देता है। कामना से कुछ नहीं होता, कामना उल्टा रास्ता है, उल्टा मार्ग है। टाइम हो गया है, आप कामना रखोगी तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते। कल के लिए भावना रखो क्या कामना रखो? भावना रखो, उपदेश कल भी मिले, क्लास कल भी चले, भावना रखो, कामना मत रखो। कल इस बात को बहुत अच्छी तरह से और समझेंगे, सम्यक ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण करेंगे। जिनवानी
ठीक है, उपस्थित सर्व